हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आज ध्रुव और मेहर की शादी हो रही थी। कल रात ध्रुव और ताला के बीच फिजिकल रिलेशन बनने के बाद तारा ध्रुव से दूर चली गई, तो वहीं ध्रुव भी अब उसे शादी में आने के लिए फोर्स नहीं कर रहा था। कल रात जो भी हुआ उसके बाद ध्रुव की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो तारा से नजरें भी मिला सके। शाम के वक्त शादी की रस्में शुरू होने से पहले वीर अलीजा और अलीशा के साथ में ध्रुव के कमरे में था। ध्रुव तैयार हो चुका था लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने पेस्टल पिंक कलर का इंडो वेस्टर्न शेरवानी पहन रखा था जिसके ऊपर ग्रीन रॉयल ब्रोच लगा हुआ था। साइड में मेहर के शादी के जोड़े से मैच करता हुआ उसने बेरी कलर का स्टोल ले रखा था। उन सबको बाहर निकालने के बाद जैसे ही ध्रुव कमरा बंद करने को हुआ सामने युग खड़ा था जिसे वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था। ध्रुव चुपचाप कमरे के अंदर आ गया। युग उसके पीछे आया था। युग ने कैजुअल कस्टम डिजाइन किया हुआ ब्लैक सूट पहना था। ध्रुव का चेहरा देखकर युग ने गहरी सांस ली और कहा, अब क्या अपनी शादी में अपनी मॉम की तरह ऐसे मुंह बनाकर जाओगे? कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है दस, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर हो अंदर बहुत दर्द हो रहा हो, ध्रुव ने युग की आंखों में देखते हुए भारी आवाज में कहा। ये पहली बार था जब ध्रुव अपने इमोशंस को उसके सामने खुलकर रख रहा था, वरना अब तक तो वो सबको यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो मेहर से शादी करके खुश है। उसकी बात सुनकर युग के चेहरे पर ईविल स्माइल आ गई थी। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है फिर जाकर चेंज कर लो, मैं सबको बोल दूंगा कि तुम्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कम ऑन डैड, मैंने ऐसा भी करने को नहीं कहा है। अब तक हम दोनों ने कभी अकेले में इस मामले में खुलकर बात नहीं की, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मैंने इस शादी से पीछे हटने की कोशिश की तो वो तीन पड़ाव कभी हमारे नहीं हो पाएंगे। माफिया किंग की पोजीशन हमारी होने के बावजूद हम पूरी माफिया की दुनिया को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ध्रुव ने इंटेंस वॉइस में कहा। उसका कहना भी ठीक था। भले ही असली तीन पड़ाव का मालिक मौलिक मल्होत्रा हो और इस बात को योग अच्छे से जानता था, लेकिन ध्रुव को ऐसे ही लगता था कि अगर उसने प्रतीक रायचंद को नाराज किया तो उनके खिलाफ जो भी माफिया है उन्हें वो भड़काकर एक बड़ी माफिया वॉर छेड़ देगा। योग के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो सच जानता था लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। अपने बिना कुछ कहे अपने हाथ फैलाकर ध्रुव को अपने पास आने का इशारा किया। बहुत कम मौके पर ध्रुव और योग एक दूसरे को हक करते थे। योग जाकर ध्रुव के गले लग गया था। युग ने उसे सहलाते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, और अगर मैं कहूं कि प्रतीक रायचंद बस एक मोहरे के अलावा और कुछ नहीं है तो क्या फिर भी तुम उस लड़की से शादी करोगे? वो बस एक डमी किंग है, असली किंग कोई और है। जैसे ही युग ने बताया ध्रुव जल्दी से उससे अलग हो गया। उसके चेहरे पर गहरी हैरानी के भाव थे। वो जल्दी से बोला, क्या? और आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मेरा सच अभी भी अधूरा था और मैं अधूरे सच के साथ कोई स्टेप नहीं उठा सकता था। हाँ, मुझे आज से 18 साल पहले ही तीन पड़ावों के असली मालिक के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो गायब था। एक पल के लिए सबकी तरह मुझे भी यही लगा कि उसने सबको छोड़कर प्रतीक रायचंद को वो तीनों पड़ाव दे दिए हैं। मैं पिछले 2 महीने से लंदन में इसी वजह से था क्योंकि मुझे पूरा सच पता लगाना था। युग ने ध्रुव को सब कुछ बता दिया था। ध्रुव सिर पकड़कर खड़ा हुआ था। अगर युग ये बात उसे पहले बताता तो ये शादी तक की नौबत ही नहीं आती, लेकिन अब उसकी और मेहर की शादी में थोड़ा ही टाइम बचा हुआ था। ध्रुव के चेहरे पर कश्मकश देखकर युग बोला, वो तीन पड़ाव कहाँ हैं इस बारे में प्रतीक रायचंद जरूर कुछ न कुछ जानता है। हाँ, उससे हमें इतना ही फायदा है और कुछ नहीं। चाहे तो बिना शादी किए ही इस बारे में हम पता लगा सकते हैं। पीछे हट जाओ, ध्रुव को सब बताकर युग उसे रोकने के लिए ही आया था। युग ने ध्रुव की तरफ देखा और नामे सिर हिला दिया था। वो बोला, आपने मुझे भागना कभी नहीं सिखाया था डैड। अगर मैंने कुछ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उससे पीछे नहीं हटूंगा। याद है ना, एक बार आपने ही कहा था कि सातों पड़ाव आपने जीते थे और उन तीन पड़ावों के जीतने की जिम्मेदारी मेरी है। आप हमेशा मेरे पीछे खड़े रहेंगे लेकिन साथ कभी नहीं आएंगे। मुझे खुद को प्रूफ करने दीजिए डैड, एंड ट्रस्ट मी, शादी जैसा रिश्ता मेरे लिए कुछ खास मायने भी नहीं रखता है। अगर सब ठीक से नहीं चला तो मैं मेहर को डिवोर्स दे दूंगा। फिलहाल मैंने ही सबके सामने मेहर से शादी करने की बात खुद से रखी थी, और युग राणा ने कभी अपने बेटे को उसके प्रॉमिस से पीछे हटना नहीं सिखाया है। युग ने बिना कुछ कहे ध्रुव की बात पर हां में सिर हिला दिया था। उसने गहरी सांस ली और ध्रुव का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है फिर स्माइल करो और शादी में चलते हैं। मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम अपनी शादी से खुश होगे तो मैं यश को जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन बिलीव मी, फिलहाल यश को बाहर निकलना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ लोगों को उसके बारे में पता चल रहा है। मेरे लिए एंजल की सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। चलिए बाहर चलते हैं डैड, ध्रुव बोला। उसने गहरी सांस ली और फिर कुछ पल रुक कर बोला,
क्या आप अभी भी नहीं बताएंगे कि उन तीन पड़ावों का असली मालिक कौन है? अगर मेरा शक गलत नहीं है तो शायद वो मौलिक सर हैं। हाँ, तुम्हारे मौलिक सर ही उन तीन पड़ावों के मालिक हैं। और अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं जानता हूँ उस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी में गहरी छाप छोड़ी है, पर फिलहाल उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है, युग ने जवाब दिया। ध्रुव और युग साथ में कमरे से बाहर निकले। अचानक बाहर निकलते ही युग के चेहरे पर फिर से ईविल स्माइल आ गई थी। उसने ध्रुव को परेशान करते हुए पूछा, वैसे तारा शादी में नहीं आई? ठीक से इनवाइट नहीं किया था क्या तुमने? कम ऑन डैड, कम से कम हमारे रिश्ते का तो लिहाज कर लीजिए। मैंने उसे आने को कहा था, लेकिन अच्छा ही है अगर वो नहीं आई तो, ध्रुव ने इतना कहकर टॉपिक क्लोज कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ तारा इस वक्त मिली और उसके भाई बहनों के साथ में थी। ध्रुव और बाकी राणा फैमिली मेहर की शादी में बिजी थी। ये उसके पास अच्छा मौका था जब वो उन सबको वहां से त्रिपुरा भेज सकती थी। तारा ने उन्हें गाड़ी में बिठाते हुए कहा, मेरी चिंता मत करना, मैं यहां से दूसरे देश जा रही हूं। बाकी तुम्हें कभी भी खतरा महसूस हो तो मुझे कॉल कर देना, हम एक दूसरे के टच में रहेंगे। थैंक यू सो मच तारा मैडम, आपने पहले भी मेरी मदद की है लेकिन इस बार आपने मेरी जिंदगी संवार दी है, मिली थोड़ा इमोशनल होकर बोली और तारा के गले लग गई थी। तारा भी मुस्कुराते हुए उसे सहला रही थी। आज का दिन तारा के लिए भारी जरूर था, लेकिन वो भी अपनी जिंदगी के एक नए पड़ाव में कदम रख रही थी। तारा अपने पुलिस ऑफिसर बनने के सपने को भूलकर वायु के पास जाकर एक नॉर्मल जिंदगी शुरू करने का सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ दक्ष इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। वो शब्द के अपार्टमेंट पर पहुंचा था लेकिन वहां पर कोई नहीं था। युग ने पहले ही याशी को वहां से हटा दिया था। दक्ष ने अपना पैर दरवाजे पर मारते हुए गुस्से ले चिल्ला कर कहा, नहीं, इतनी आसानी से मैं मेहर रायचंद को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मुझे वो तीन पड़ाव हर हालत में चाहिए। मेहर और ध्रुव की शादी भी नहीं हो सकती है। क्या हुआ जो मेरे पास वो लड़की नहीं है? अभी भी मैं अपने प्लान पर काम करूंगा। मैं देखता हूँ कि कैसे ये शादी आज हो पाती है। एक तीर से दो निशाने लगाऊंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा, ध्रुव राणा।
दक्ष ने तुरंत अपने आदमी को कॉल पर कनेक्ट किया और बोला, राणा मेंशन में क्या चल रहा है, मुझे इसकी अपडेट दो। सर, अभी यहाँ पर डांस और बाकी चीजें चल रही हैं। शादी होने में लगभग दो घंटे का टाइम बाकी है। बाकी हर एक चीज पर मेरी पूरी नजर है, एक आदमी ने जवाब दिया जो इस वक्त राणा मेंशन में वेटर के कपड़ों में था। दक्ष के कहने पर वो हर एक सिचुएशन पर नजर रख रहा था। ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा, दक्ष बोला और उसने कॉल कट कर दिया था। दक्ष वहां से तुरंत गाड़ी लेकर अपने ठिकाने जाने लगा, लेकिन उससे पहले उसे दो काम करने थे। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में कृषा इस वक्त कुछ अरेंजमेंट देखने के चक्कर में तैयार तक नहीं हुई थी। उसने बिल्कुल सिंपल सी नेवी ब्लू साड़ी पहन रखी थी। कृषा काफी देर से दिखाई नहीं दे रही थी तो युग ने उसे कॉल किया। वो उसकी कॉल रिसीव करते ही बोला, कहाँ हो, कब से तुम्हारे बेटे को अकेले संभाल रहा हूँ? देखो, इसका पता नहीं लेकिन तुम मुझे अपनी आंखों के सामने नहीं दिखाई देती हो तो मेरी दुनिया थम सी जाती है। कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारी ही दुनिया में मौजूद हूँ और हमेशा आंखों के सामने ही रहने वाली हूँ। बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे न जाने कब से न देखा हो। अभी दो घंटे पहले ही तो एक दूसरे के साथ थे, दो घंटे में तुम्हारा ये हाल हो रहा है? सोचो, कभी मेरे बिना रहना पड़ा तो फिर क्या करोगे तुम? कृषा ने काफी हल्के तरीके से कहा था, लेकिन वही उसकी बात सुनकर युग और ध्रुव दोनों के ही चेहरे के भाव सर्द हो गए थे, क्योंकि कॉल स्पीकर पर था। तो फिर मैं ये दुनिया ही खत्म कर दूंगा, युग से पहले ध्रुव ने रिएक्शन दिया। वो गुस्से में तेज सांस लेते हुए बोला, मेरी जिस दुनिया में आप नहीं होगी मैं वो दुनिया ही खत्म कर दूंगा कृष, और आगे से आप ऐसी फालतू बकवास बिल्कुल नहीं करेंगी। आपकी सारी उल्टी सीधी हरकतें मंजूर हैं लेकिन ये बातें कभी नहीं। ठीक है ना, मजाक भी नहीं समझते हो तुम दोनों? कृषा ने तुरंत अपनी मिस्टेक को सही करते हुए कहा। वो जानती थी कि भले ही युग चुप हो लेकिन गुस्से में तो वो भी था। जब तुम्हें पता है कि हमें इस तरह का मजाक पसंद नहीं है तो फिर करना जरूरी है क्या? अभी तुम मेरे सामने नहीं हो, वरना पता चल जाता कि तुम्हें तुम्हारी इस मजाक पर क्या पनिशमेंट मिलने वाली थी कृष, युग ने सर्द आवाज में कहा। युग और ध्रुव कृषा की आंखों के सामने नहीं थे, फिर भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों सच में मुझे डरा रहे हो, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हार्ट अटैक। कृषा की बात पूरी होने से पहले ही ध्रुव और युग एक साथ बोले, जस्ट शट अप कृष। अच्छा ठीक है ना, एक घंटे में मिलती हूँ, कृषा ने मुंह बनाकर कहा और जल्दी से कॉल कट कर दिया। उसे पता था कि वो दोनों उसे और डांटने वाले थे। कृषा ने कॉल कट किया ही था कि उसके पास तुरंत दूसरा कॉल आया। कृषा को लगा युग ने फिर से कॉल किया है, लेकिन वो नए नंबर से कॉल था तो उसने रिसीव कर लिया। जैसे ही कृषा ने कॉल रिसीव किया दूसरी तरफ से दक्ष की आवाज आई, याशी राणा, यही नाम है ना उसका? चेहरा बिल्कुल आपकी तरह लगता है मिसेज राणा, और आंखें तो बिल्कुल अपने डैड पर गई हैं। सिर्फ चेहरा ही नहीं, मासूमियत भी बिल्कुल आप ही की तरह है। अच्छा एक बात बताइए मिसेज राणा, घर में उसके बड़े भाई की शादी है और बेटी को इस तरह शब्द के अपार्टमेंट में छोड़ना अच्छा डिसीजन है क्या? मुझे मिस्टर राणा से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही कृषा ने दक्ष की बातें सुनी उसे एक झटका सा लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे।
भले ही कृष्णा ने याशी का चेहरा नहीं देखा था, ना ही उसकी आवाज सुनी थी, लेकिन वो शब्द के अपार्टमेंट में थी और जैसे जैसे दक्ष बता रहा था उसकी हर एक बात सही थी। कृष्णा लड़खड़ाकर गिरने वाली ही थी कि उसने जल्दी से अलमारी का दरवाजा पकड़ लिया था। कौन हो तुम? देखो उसे उसे कुछ मत करना। तुम चाहो तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मेरी बेटी को प्लीज कुछ मत करना। मैं युग को बताती हूँ, वो तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा, पर प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। कृष्णा अटकते होते हुए अपनी बात पूरी करने की कोशिश कर रही थी। अरे अरे मिसेज राणा, अभी तो आपने अपनी बेटी को तकलीफ में देखा भी नहीं और दर्द से बुरी तरह पागल हो उठी। मुझे मिस्टर राणा से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मुझे कभी नहीं दे पाएंगे। फिलहाल तो आप अपनी बेटी को बचाने के लिए मेरे बताई जगह पर आ जाना, और गलती से भी अगर अपने बेटे और पति को इसकी भनक भी लगने दी तो आई स्वेयर इसकी जान लेने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा, दक्ष ने सर्द आवाज में कहा और फिर कॉल कट कर दिया था। उसने कृष्णा को कुछ कहने का मौका नहीं दिया और सीधे उसे लोकेशन भेजकर अपना फोन बंद कर दिया था। कृष्णा वहां जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। वो जानती थी कि अगर युग को इस बारे में पता चला तो वो एक झटके में याशी को वापस ले आएगा, लेकिन बात याशी की जान की थी, वो कोई भी खतरा नहीं उठा सकती थी। वही कृष्णा से बात करने के बाद अब दक्ष को दूसरा खेल खेलना बाकी था। वो तिरछा मुस्कुराते हुए तारा को कॉल करने जा रहा था। तारा इस वक्त टैक्सी लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी कि तभी उसके पास दक्ष का कॉल आया। प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, मैं जानता हूँ कि तुम हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, हमसे नफरत करती हो तारा, लेकिन इस वक्त मैं खतरे में हूँ। तुम पुलिस ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग ले रही हो ना, तुम मुझे बचा सकती हो। प्लीज अपने बड़े भाई के लिए इतना नहीं करोगी तारा, प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। दक्ष कॉल पर रोते हुए बोल रहा था, मानो कोई उस पर कितना ही बड़ा टॉर्चर क्यों ना कर रहा हो। तारा आगे कुछ कहती उससे पहले दक्ष ने कॉल कट कर दिया था, फिर उसका दूसरा नंबर भी बंद हो गया था। तारा ने तुरंत उसके नंबर की लोकेशन निकाली और वहां जाने के लिए निकल चुकी थी जहां दक्ष ने कृष्णा को बुलाया था।